पृष्ठ संख्या 273, अध्याय 14, समकालीन साहित्यिक दृश्य। इतिहास राजनीति का हो या दर्शन का, सामाजिक संस्थाओं का हो या संस्कृति का, कला का हो या साहित्य का, काल के गर्भ से उत्पन्न होने वाली हलचल का व्याख्यान ही है। साहित्य के क्षेत्र में यह हलचल व्यक्ति के भाव एवं चिंतन के माध्यम से इतिहास का अंग बनती है, और साहित्यकार व्यक्तिगत रूप में अपने निज को जितना स्वाधीन बनाने का काल्पनिक यत्न करता है, उतना ही बाहर से अंदर की ओर सिमटता जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी उसका नाता जीवन की मूल धारणाओं से टूट जाता है और उसका साहित्यिक परिप्रेक्ष्य सीमित हो उठता है। जब वह स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा, समस्त मानसिक और भावनात्मक शक्तियाँ इस विषय पर केंद्रित रहीं, स्वाधीनता प्राप्ति हुई और उस जीवन की खोज प्रारंभ हो गई जो शांतिमय हो सके। इसमें अनेक स्वप्न भंग हुए और बहुत से लेखकों की लोकतंत्र से आस्था ही उठ गई। सांप्रदायिक उपद्रव, प्रगतिशील विचारों का विरोध, विदेशी पूंजीवाद पर बढ़ती हुई निर्भरता और इसी प्रकार की अनेक प्रतिक्रियावादी धारणाएं बड़े वेग से उभर कर सामने आईं। भारत के विभाजन, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली संस्थाओं की दुर्बलता और राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आपसी संघर्ष, स्वार्थपूर्ण नेताओं का नैतिक पतन आदि बातें इस प्रकार एकत्र हो गईं कि नई पीढ़ी ने अपनी परंपराओं पर ही विश्वास खो दिया। दूसरी बड़ी लड़ाई के पश्चात यूरोप और अमेरिका भय और आशा की जिन लहरों में डूबते उभरते रहे, उन्होंने सोच विचार की पुरानी धारणाओं को नया रूप दिया। एक ओर विज्ञान ने यथार्थवाद की तरफ खींचा तो दूसरी ओर मनोविज्ञान के विभिन्न विचारों ने अनजाने आंतरिक संघर्षों को ही मूल जीवन बनाकर बाहर के सामाजिक संघर्षों और वैज्ञानिक उपलब्धियों से मिलने वाले सुख से दूर कर दिया। यह विचार मन में बैठ गया कि मनुष्य की अपनी निजी सत्ता नहीं होती, उसे विज्ञान, राजनीति, परंपरा, विज्ञप्ति, औद्योगिक जीवन ने एक सूत्र में बांध रखा है और जीवन के प्रत्येक क्षण में वह अपनी सत्ता और व्यक्तित्व को बचाने के यत्न में टूटता रहा है। उसे किसी धर्म, राजनीतिक विचारधारा, किसी बड़े बनाए जीवन लक्ष्य पर विश्वास नहीं रह गया है। परिणाम यह हुआ कि नई पीढ़ी के अनेक लेखक एवं कवि इसी में खो गए हैं। जीवन को सामूहिक रूप में देखने, एक लोकप्रिय मानव जीवन राजनीतिक क्रम को ढूंढ निकालने की चिंता कम हो गई है। फिर भी जहाँ तक भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियों का संबंध है, अभी प्रत्येक भाषा में ऐसे लेखक बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो जीवन के मूल अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं। और पृष्ठ संख्या 274, अपनी सृजनात्मक शक्तियों को मानव की सेवा में समर्पित कर देना चाहते हैं। आज इस संघर्ष ने कला और साहित्य में एक बार फिर कला कला के लिए या कला जीवन के लिए के बहुमुखीवाद विवाद का रूप धारण कर लिया है, जिसे नई दार्शनिक शब्दावली में प्रस्तुत किया जा रहा है। उर्दू साहित्य में प्रगतिवाद और मानववाद की परंपराएं कितनी दृढ़ रह चुकी हैं, इसका अनुमान इस संक्षिप्त इतिहास से भी लगाया जा सकता है, चाहे वह गद्य हो या पद्य। इस समय भी वही नाम पहले लिए जाते हैं जिनका उल्लेख गत अध्यायों में किया गया है और जो आज भी जाने माने जाते हैं, जैसे कृष्णचंद्र वेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत सज्जाद, जहीर अहमद, नदीम कासिमी, अश्क मिर्जा अदीब, हाजरा मसरूर, हयातुल्लाह, सरदार जाफरी, फैज जज़वी, आज़ाद कैफी, मखदूम जमील, मजहरी वजद, तांबा अख्तर अंसारी इत्यादि। यहाँ उनके बारे में केवल इतना ही कहना है कि यह उर्दू साहित्य की परंपराओं को विवेकपूर्वक अभीष्ट रखते हुए वर्तमान समस्याओं और आज के बदलते हुए समाज की करवटों को भी कलात्मक शक्ति के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। वह नए जीवन के मर्मों से परिचित तथा आलोचक हैं और कला में नए प्रयोग इस प्रकार करते रहते हैं कि न उनके विचार अस्पष्टवाद में खो जाएं और न उनकी कृतियों को युग चेतना के विरुद्ध ही कहा जा सके। इस प्रकार साहित्य की धारा प्रवाहपूर्ण बह रही है जो जीवन की गहरी सांस्कृतिक चेतना से निकली है। समकालीन उर्दू साहित्य में काव्य रचना प्रयोगवाद, स्पष्टवाद, प्रतीकवाद और निरुद्देश्यवाद से अत्यधिक प्रभावित हुई है। यहाँ तक कि नई कविता लिखने वाले अपने को सबसे अलग करने के लिए कविता की सभी परंपराओं से अपना नाता तोड़ रहे हैं। यह और बात है कि उनकी विचारधारा यूरोप और अमेरिका के कुछ दार्शनिकों, लेखकों और कवियों से मिल जाती है और जो कुछ वहाँ हो चुका है उसी को दोहराने की चेष्टा की जाती है। बदलती हुई परिस्थितियों में नई कविता का जन्म स्वाभाविक है, किंतु उसी कविता मात्र को नई कहने का आग्रह समझ में आने वाली बात नहीं है जो जीवन के मूल्यों का बहिष्कार करती हो और सामाजिक चेतना को काव्य रचना में बाधक जानती हो। इन कवियों में जो नई कविता के आंदोलन में सम्मिलित हैं, कुछ वह हैं जो पहले या तो प्रगतिवादी कहे जाते थे या वर्तमान युग के साधारण परिवर्तनों से प्रभावित थे। कुछ ऐसे हैं जो सामाजिक चेतना का विरोध नहीं करते हैं, किंतु काव्य रचना के लिए नए प्रयोग और अभिव्यक्ति के नए साधनों पर जोर देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो भाषा, विचार, कला के सभी नियमों को तोड़ना अपने व्यक्तित्व को सिद्ध करने के लिए आवश्यक समझते हैं। वह इस बात को नहीं मानते कि कोई कवि अपनी अनुभूतियों को उस भाषा में किस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए संप्रेषण सदैव ही अपूर्ण रहेगा। पृष्ठ संख्या 275। भाषा और प्रतीकों के ये सभी प्रयोग कई स्तरों पर हो रहे हैं, इसलिए अभी यह कहना कठिन है कि साहित्य के इतिहास में इस नई कविता को क्या स्थान दिया जाएगा और भविष्य में इसे क्या रूप मिलेगा। इसके अनुयायी भी अभी केवल प्रयोग ही समझते हैं जो वर्तमान युग की बेचैनी और द्रुतगामी वैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण अनिवार्य हैं। यद्यपि इन नए कवियों की संख्या काफ़ी बड़ी है, किंतु उनमें कुछ एक को ही मान्यता प्राप्त हो सकी है। संक्षेप में उन्हीं का उल्लेख किया जाएगा। यह तो स्मरण ही होगा कि प्रगतिशील कवियों के विरोध में एक धारा लगभग उसी के समानांतर चल रही थी, जिसकी विशेषता छंद प्रयोग के विभिन्न आयामों के अतिरिक्त यह भी थी कि उसमें सामाजिकता के विपरीत व्यक्ति के आंतरिक तथा यौन जीवन का प्रसार होता, जिसके अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार प्रतीकों का आश्रय ग्रहण करता। ये प्रतीक कभी देवमालाओं में और कभी अवचेतन का सहारा लेकर अपूर्ण शब्दों में ढूंढे जाते थे। इस दल के नेता मीरा जी, राशिद और मुख्तार सिद्दीकी थे। जहाँ तक मुक्त छंद के प्रयोग का संबंध है, अनेक प्रगतिशील कवि भी इसे अपने ढंग से काम में लाने लगे थे। प्रतीकों का प्रयोग भी किसी न किसी रूप में सब करते थे, किंतु दोनों के बीच जो व्यापक अंतर था वह उनके सामाजिक चेतना से स्पष्ट होता था। नई कविता ने मीरा जी की ही परंपरा को दूसरे रूप में प्रोत्साहित किया। वे केवल पो, वेलरी, वादलियर, रामबू और फ्रायर से प्रेरणा लेते थे। नई कविता ने जवाइस, लॉरेंस, यूंग, सात्र, कामू, आर्बेल, डाइलन, टॉमस के अतिरिक्त बीट्स, जेनरेशन, एंग्री यंग मैन, एंटी पोएट्री, थिएटर ऑफ एब्सर्ड आइडेंटिटी, क्राइस, एलियनेशन के विचारों से भी प्रेरणा ग्रहण की। इनसे उत्पन्न होने वाली सभी विचारधाराएं मानववाद और समाजवाद के विरुद्ध जाती हैं, इसलिए अधिकांश नए कवि चेतनापूर्वक और अनजाने में सामाजिक उन्नति के प्रतिकूल ही विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और इसे विचार स्वतंत्रता का नाम देते हैं। नए कवियों में खलीलुर रहमान, वाकर मेहंदी, वहीद अख्तर, बलराज कोमल, राही मासूम रज़ा, अमीक हनफी, मुनीबुद रहमान, शाज तमकनत, मजहर इमाम, महूर मजर, अर्श सिद्दीकी, साकी फारूकी, नासिर शहजाद, मुनीर नयाजी, नासिर काजमी, मुस्तफ़ा जैदी इत्यादि पाकिस्तान में अपनी अनेक विशेषताओं के कारण जाने पहचाने जाते हैं। खलीलुर रहमान आजमी जन्म 1927 ईस्वी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। 1950 ईस्वी के पूर्व ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कविताओं के तीन संग्रह आईना खाने में, कागजी पैरहन और नया अहमदनामा प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा संग्रह कतिपय नई कविता से प्रभावित है। उनकी विचार पद्धति नए कवियों की सी है, किंतु उनकी कला पुराने कवियों का रचाव रखती है। खलीलुर रहमान एक सुलझे हुए आलोचक भी हैं। फिक्रो फन जाविये निगाह मुकद्दमे कलामे पृष्ठ संख्या 276 आतश और नवाए जफर उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। वाकर मेहंदी जन्म 1928 ईस्वी भी इसी पीढ़ी के कवि एवं आलोचक हैं। लेखक की व्यक्तिगत विचारधारा पर बहुत बल देते हैं। इस समय सभी प्रकार के वादों विचारधाराओं से असंतुष्ट हैं। उनकी भाषा उखड़ी उखड़ी और प्रतीक अस्पष्ट होते हैं। कविताओं के दो संग्रह सहरे आरजू और काले कागज की नज़में और आलोचनात्मक निबंधों का एक संग्रह आगाही व बेबाकी प्रकाशित हुए हैं। वहीद अख्तर भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। वह जीवन के रहस्यों को पूरी नज़र से देखते हैं और भाषा में बहुत से प्रयोग किए बिना ही अपनी बात सुंदरतापूर्वक कह जाते हैं। उनका पहला संग्रह पत्थरों का मुगंती 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बलराज कोमल भी 1950 ईस्वी के पहले ही ख्याति प्राप्त कर चुके थे, किंतु पिछले 10 वर्षों में उन्होंने नई कविता को ही अपना आदर्श मान लिया है। उनके दो संग्रह मेरी नज़में और दिल का रिश्ता प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ ही दिनों पूर्व नागरी लिपि में भी एक संग्रह नारियल के पेड़ प्रकाशित हुआ है। बलराज कोमल कहानियाँ भी लिखते हैं जिनमें प्रतीकों के माध्यम से नवीनता पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। राही मासूम रज़िया ने काव्य जगत में प्रवेश करते ही ख्याति प्राप्त कर ली और अपनी पीढ़ी के प्रगतिशील कवियों में गिने जाने लगे। उनके तीन काव्य संग्रह रक्से मैं 1957 और अजनबी शहर अजनबी रास्ते प्रकाशित हो चुके हैं। 1957 एक लंबी कविता है जो महाकाव्य की परंपरा में लिखी गई है। अमित हनफी पुराने से नए की ओर आए हैं और अपने को बड़ी कटुता से नई पीढ़ी से जोड़ते हैं। पहले एक संग्रह संग पैराहन छपा था, अब एक लंबी कविता सिंधबाद प्रकाशित हुई है जो खोए हुए नव मानों को प्रतीकात्मक रूप में वाणी देती है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के फारसी के प्राध्यापक मुनीबुर रहमान अपने दृष्टिकोण के आधार पर प्रगतिशील हैं, कम लिखते हैं लेकिन जो कुछ है वह कलात्मक है। कविताओं का केवल एक संग्रह वाजदीद प्रकाशित हुआ है। हैदराबाद के शाज तमकनत ने कुछ ही समय में अपने लिए एक स्थान बना लिया है। एक संग्रह तराशीदा छपा है। मजहर इमाम बिहार के लोकप्रिय नए कवि हैं। उनकी कला की नवीनता सामाजिक चेतना का बहिष्कार नहीं करती। कविताओं का एक संग्रह यख्मे तमन्ना प्रकाशित हो चुका है। शहाब जाफरी दिल्ली में उर्दू के प्राध्यापक हैं। सुविख्यात उर्दू कवियों में गिने जाते हैं। विचारपूर्ण कविताएं लिखते हैं। एक संग्रह सूरज का शहर अभी कुछ समय पहले छपा है। शहरयार अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाते हैं। काव्य रचना की आयु दूसरे नए कवियों को देखते हुए कम है, किंतु विचारों की नवीनता और अभिव्यक्ति की सुंदरता ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। उनका संग्रह इसमें आजम प्रकाशित हो चुका है। इन्हीं नए कवियों में कुमार पाशी अपनी शैली की नवीनता और प्रतीकों के अनूठेपन से पहचाने जाते हैं। उनका पहला संग्रह मौसमों की आवाज़ उपलब्ध है। पृष्ठ संख्या 277। पाकिस्तान में भी नई कविता का आंदोलन बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। वहाँ के यश प्राप्त कवियों में वजीर आगा का नाम पहले आता है क्योंकि वह नई कविता की विशेषताओं और मूल धाराओं की व्याख्या का कर्तव्य भी पूरा करते रहते हैं। डॉक्टर वजीर आगा की विचारधारा यूंग की मनोवैज्ञानिकता से अत्यधिक प्रभावित है, जिसका प्रमाण उनकी पद्य रचनाओं के अतिरिक्त गद्य कृतियों में भी मिलता है। उनकी कविताओं का केवल एक संग्रह शाम और शाये है, परंतु गद्य में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मसर्रत की तलाश, ख्याल पारे और चोरी से यारी तक उनके साहित्यिक निबंधों के संग्रह और उर्दू शायरी में तंजो मिजाह, नज़्मे जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज और तनकीदो एहतसाब आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अहमद फराज अच्छे नए कवि हैं। उनका संग्रह दर्द आशोक प्रकाशित हो चुका है। मुस्तफ़ा जैदी ने काव्य जगत में तेग इलाहाबादी के नाम से प्रवेश किया। वह पाकिस्तान उस समय गए जब उनको कवि के रूप में ख्यात मिलने लगी थी, किंतु पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बड़ी उन्नति की है। उनके काव्य संग्रह रोशनी, गरिमा, कवाए साज प्रकाशित हो चुके हैं। जहूर नज़र भी पाकिस्तान के अच्छे कवि हैं, जो प्रगतिशीलता के साथ ही शैली की नवीनता पर भी बल देते हैं। उनकी कविताएं रेजा रजा के नाम से छप चुकी हैं। अर्श सिद्दीकी, दीदाए याकूब, नासिर शहजाद, चांदनी की पत्तियां, साकी फारूकी, प्यास का सहारा, जफर इकबाल, आवे खां, शहजाद अहमद, सदफ, फहमीदा रियाज, पत्थर की जवान, अंजुम आजमी, लबो रुखसार, इब्ने इंसा, चांद का नगर, मुनीर नयाजी, जंगल में धनुक भी नई कविता के प्रतिनिधि कवि समझे जाते हैं। इनके अतिरिक्त भारत में मंजर सलीम, महमूद अयाज, अजीत तमन्नाई, राज नारायण राज, मुहम्मद अलवी और पाकिस्तान में अदा जाफरी, महबूब खिजां, जमील मलिक, वाकई सिद्दीकी, अब्दुल अजीजी खालिक, जमील उद्दीन आली, मुशफिक ख्वाजा भी नए कवियों में जाने पहचाने नाम हैं। यह अवश्य कि चेतना और दृष्टिकोण के स्तर पर इनमें विभिन्नता पाई जाती है। एक और विचारणीय बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों में कुछ वर्षों के भीतर गज़ल को बड़ी लोकप्रियता मिली है, क्योंकि गज़ल की यह विशेषता रही है कि उसमें नए परिवर्तनशील विचार भी नए साँचे में सहज ढंग से ढल जाते हैं। कविता के बराबर तो नहीं, किंतु कहानी और उपन्यास में भी आधुनिकता ने अपना प्रभाव डाला है। इस प्रकार ग्रहण की गई नवीनता केवल विचारधारा और शिल्प विधि की नहीं है। जीवन को टूटे फूटे और बिखरे हुए मान लेने और उसी को प्रोत्साहित करने के कारणवश संभव हुई है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, किंतु यहाँ भी जिस कलाकार ने जीवन को देखा और समझा है, जिसने किसी मूल विचारधारा का सिरा पा लिया है और जिसे कहानी के रोचक बनाए रखने का जादू आता है, वही साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हो सका है। यह बात कही जा चुकी है कि अनेक पृष्ठ संख्या 278 कथाकार, जिनका उल्लेख पिछले अध्याय में हुआ, आज भी बड़ा महत्व रखते हैं। उनके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। नए कथाकारों में कुर्रतुल ऐन हैदर, रामलाल अनवर अजीम, जोगेंद्र पाल, जीलानी बानो, आमना अबुल हसन, वाजिदा तबस्सुम, गयास गद्दी, काजी अब्दुल सत्तार, इकबाल मतीन भारत में, और हाजिरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, ए हदीम, जमीला हाशमी, रजिया फसीह, गुलामु सकलैन, सादिक हुसैन, कासिम महमूद, हमीद काश्मीरी, जीलानी असगर पाकिस्तान में मान्यता के पात्र माने जाते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर 1947 ईस्वी तक काल्पनिक रोमांचकारी कथाएं लिखती रहीं, किंतु स्वतंत्रोत्तर की परिस्थितियों से प्रभावित होकर जब उन्होंने अपना पहला उपन्यास मेरे भी सनम खाने लिखा, तो उनका दृष्टिकोण और शिल्प दोनों बदले हुए दिख पड़े। उसी समय से उन्होंने उपन्यास और कहानी में अपूर्व उन्नति की है। उन्होंने पश्चात साहित्य, भारतीय कला तथा संस्कृति का गहरा अध्ययन किया है और भाषा के प्रयोग पर उन्हें असाधारण क्षमता प्राप्त है। उनकी लोकप्रियता का रहस्य भी भारतीय जीवन स्रोतों की खोज करना ही है। उनकी कहानियों के संग्रह सितारों से आगे, शीशे के घर और पतझड़ की आवाज़ है, और उपन्यासों में मेरे भी सनम खाने, सफ़ीनए गमे दिल, आग का दरिया, चाय का बाग, सीता हरण और आखिरी शब के हमसफर हैं, जिनमें की रचना क्षमता का वैशिष्ट दिखती है। उन्होंने कई बहुत अच्छे अनुवाद भी किए हैं। रामलाल ने भी 1947 के पहले ही लिखना प्रारंभ कर दिया था, परंतु उनकी ख्याति 1955 के बाद हुई। वह अत्यंत जागरूक रचनाकार हैं और जीवन के विविध स्तरों को अपनी अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्त करते रहते हैं। उनके अनेक कहानी संग्रहों में गली गली आवाज पहचानो तो, चिरागों का सफर और कल की बातें उल्लेखनीय हैं। अनवर अजीम लोकप्रिय कहानीकार हैं। साधारण घटनाओं से सुंदर चित्र बनाने में उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त है, जिसमें उनकी मूल विचारधारा भी स्पष्ट होती रहती है। उनका एक उपन्यास धुआं धुआं सवेरा प्रकाशित हो चुका है। जोगेंद्र पाल ने अफ्रीका में रहकर कहानी लिखना शुरू किया और उस समय की कहानियों में वहीं की पृष्ठभूमि को आधार बनाया, फिर पाकिस्तान और भारत में यहाँ की धरती की खोज की। नए कहानीकारों में उनका विशेष स्थान है। कहानी संग्रह धरती का काल और उपन्यास एक बूंद लहू की और कछुआ उल्लेखनीय हैं। जीलानी बानो ने प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित होकर थोड़े ही समय में यश प्राप्त कर लिया है। कहानियों का संग्रह रोशनी के मीनार और लघु उपन्यासों का संग्रह जुगनू और सितारे छप चुके हैं। अमाना अबुल हसन भी जीलानी बानो की तरह हैदराबाद से संबंध रखती हैं और वहीं के जीवन से अपनी कहानियों में रंग भरती हैं। एक संग्रह कहानी छप चुकी है। वाजिदा तवस्सुम भी हैदराबाद की ही कहानीकार हैं। उनकी रुचि यौवन चित्रण की ओर है। एक संग्रह शहरे ममनुओं प्रकाशित हुआ है। व्यास गद्दी बिहार के अच्छे पृष्ठ संख्या 279 कहानीकार हैं। जनजीवन से अपनी कहानियों के ताने बाने तैयार करते हैं। कहानी संग्रह बाबा लोग छप रहा है। काजी अब्दुल सत्तार अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक हैं। ग्राम जीवन के चित्र बड़े रोचक और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता भी होती है और सहज प्रवाह भी। उनके उपन्यास जैदे अनेक उपन्यास जैसे सब गुजीदा, मज्जू भैया, दारा शिकोह उपलब्ध हैं। अभी कहानियों का कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है। इकबाल मतीन हैदराबाद के अच्छे कहानीकार हैं। कहानियों का संग्रह उजली परछाइयाँ छप चुका है।